बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आओ बात करें अलिफ टीवी के प्रोग्राम के साथ। अली अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है टीम बिल्डिंग। टीम क्यों टूट जाती है, लोगों को अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। आपने अक्सर ये CEO से ख़ास तौर पर शिकायत करते हुए लोगों को देखा होगा कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। अगर लोग आ जाते हैं तो वो छोड़ जाते हैं हमेशा की तरह। हमारे साथ सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
शाह साहब, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट का भी है और गवर्नमेंट से बाहर प्राइवेट का भी है। गवर्नमेंट में तो आप एक दफ़ा जब जॉब शुरू करते हैं तो आपने आखिर वक्त तक आपने वहाँ पर जॉब करनी होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जॉब क्विट करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में CEOs अक्सर एक शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। अगर अच्छे लोग हमारे पास आ जाएँ तो वो टिकते नहीं हैं, और अगर लोग तंग करते हैं तो इसकी क्या वजह है कि जो टीम है ये क्यों नहीं बनती। ये खास तौर मुझे हसन रजा साहब ने ये टॉपिक दिया और उन्होंने कहा कि शाह साहब के साथ आप इस मौजू पे बात करें ताकि ये CEOs का एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, फिर CEOs ये समझ रहे होते हैं कि हम तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, जो एम्प्लॉई है वो ये सोच रहा होता है कि हमें तनख्वाह कम मिल रही है, तो ये मुतवाजन तरीके से कैसे एक डेवलपमेंट हो सकती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं माजरत कर लूँ कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब, गला जो आजकल मौसम के नतीजे में है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके कई एक रीजंस, मल्टीपल रीजंस हैं कि टीम बनती कैसी है, एक अच्छी टीम बिल्डअप करने में क्या क्या फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इसी तरह टीम के टूटने के मल्टीपल रीजंस हैं
जी।
बहुत से फैक्टर वहाँ काम कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चूँकि हम अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे हैं, एवोल्यूशन हो रही है, और जब इंसान इस प्रोसेस में होता है आगे बढ़ने के, तो गलतियाँ भी हो रही होती हैं। मेंटल बैरियर्स बहुत से डेवलप हुए होते हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी एक और फैक्टर है जो उसके अंदर काम कर रहा होता है। हमने एक बड़ा लंबा अरसा आज़ादी से पहले सेठिज्म देखा, सेठ कल्चर।
आज़ादी, ये 1947 की आज़ादी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है।
1947 से पहले
जी
हमने सेठिज्म देखा, हिंदू काबिज था बिजनेस पर, हिंदू सिर्फ पैसा कमाने की तरफ उसका ध्यान था,
ठीक।
तो वो सेठ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में चलता था, वो अभी तक हम कैरी कर रहे हैं, हमने उसे चेंज नहीं किया। बहुत से ग्रुप्स पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रुप बने
जी,
एक हद तक डेवलप हुए
जी जी,
और फिर वो वहाँ जाके टिक गए
जी जी बिल्कुल।
उनके यहाँ जब औलाद उनकी पढ़ने गई वेस्ट में
जी जी,
पढ़ के आए तो उन्होंने उस कल्चर को ख़त्म किया, वो ब्रेक आया। लेकिन हुआ यही कि कुछ भाइयों ने मिलकर बिजनेस बनाया
जी,
वो एक सत्ता तक उठा सेठिज्म के तहत, एक हद तक ही ऊपर जाएंगे, एक हद तक फैला हुआ बिजनेस सेठिज्म के जरिए कंट्रोल होगा, उसके बाद उसकी तरक्की रुक जाती है। तो वो वहाँ जाके रुक गए। जब औलाद जवान हो गई और वो पढ़ के आई तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर फर्दर बिजनेस तो वो छोटे छोटे पॉकेट्स में आ गया,
ठीक।
कुछ लोगों ने उसको बड़ा तेज़ी से डेवलप किया। एक ग्रुप, उसको मैं सबसे पहले वहाँ जाके उसके चेयरमैन से जब मिला, तो उस वक्त मैं गालिबन 25 ईयर्स के करीब हूँगा, तो मैंने उस ग्रुप को देखा, प्योरली सेठिज्म था,
ठीक।
लेकिन फिर उनके आगे बच्चे जवान से पढ़ गए, उन दोनों भी वो सेठ साहब बहुत बूढ़े थे, वो जब औलाद वेस्ट से पढ़ के आई तो फिर उस ग्रुप की तरक्की देखने के लायक थी। उन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर ली, ह्यूज। इसी तरह और मुख्तलिफ ग्रुप्स से मैं उसी ज़माने में वाकिफ हुआ। नहीं, तरक्की सही मानों में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो करती है वो करती कॉरपोरेट कल्चर के तहत।
ठीक है।
कॉरपोरेट कल्चर के अंदर बुनियादी जो प्रिंसिपल काम करता है वो ये है कि आप अपने कोलीग्स को जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ट्रांसफ़र करते हैं।
ठीक।
ज़बान से नहीं कहते, अपनी हरकतों से वो सेंस उनको देते हैं।
ठीक।
एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करते हैं उनके अंदर कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है।
सही।
ये दो बुनियादी फैक्टर हैं और इसमें हम अक्सर लैक कर जाते हैं जहाँ एनलाइटेंड मैनेजमेंट नहीं है।
जी जी।
वहाँ पर ये यहाँ लैक कर जाते हैं।
अच्छा शाह जी, आपने ज़िक्र किया कि बच्चे जब बाहर से पढ़ के आते हैं, मेरा अभी ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा ये रहा है कि बाप ने अपने जो एम्प्लॉज़ हैं उनको बड़े प्यार से रखा होता है और एक एक करके एक एक जगह पे उनके साथ वक्त गुजारा होता है, उनके साथ उनकी शादियों पे जाना, उनकी फोतगियों पे जाना, इस तरह से करके वो 20-30 साल में उन्होंने एक टीम बिल्ड की होती। जैसे ही बच्चे आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, आप असल में मेरा सवाल समझ गए होंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो उसी एम्प्लॉज़ को ऑफेंड कर देते हैं, वो कहते हैं ये तो बाबा सोच है और ये पुरानी सोच के लोग हैं। अच्छा, उनकी उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती, वो आते ही वो कहते हैं जी ये जो बाबे हैं ना और ये जो स्लो थिंकर्स हैं इनको निकालें, हम अपने इनके साथ नहीं चल सकते। वो फिर अपने ही दोस्त जिनके साथ उन्होंने पढ़ाई की होती है या जो यंग ब्लड होता है वो उनके साथ काम करना बेहतर लगता है आपको, तो ये इस तरह तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है।
इसका जवाब मैं असल में अपनी गुफ्तगू के शुरू ही में आपको दे चुका, जहाँ मैंने सेठ कल्चर की बात की।
जी।
फ़र्ज़ के लिए कि मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ, मेरे साथ एक पियून मेरे साथ अटैच
हो गया,
अब उस दफ्तर की टोटल स्ट्रेंथ मैं हूँ और मेरा एक पियून है।
जी।
मैंने मेहनत की, ग्रो करना शुरू किया, कोई सिस्टम्स नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे फैसले ही आखिरी वर्ड हैं, वहाँ कहीं टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा फैसलों में, किसी और चीज़ में, सोच विचार में, राइट देयर ऑन द स्पॉट में डिसीजन लेता हूँ। आगे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, मैं एक अकाउंट्स क्लर्क ले आया अपने साथ।
जी।
उसको रख लिया, इसी तरह फिर एक सेल्समैन को मैं ले आया, उसको रख लिया। अब हमारे दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
जी जी।
क्योंकि हमने स्क्रैच से काम शुरू किया इकट्ठे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ हम सभी ग्रो कर रहे हैं, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है हमारा। अदारा बड़ा हो गया, वही जो अकाउंट्स क्लर्क में लेकर आया था
जी,
जो एफए पास था और बाय प्रैक्टिस अकाउंटेंट था वो
जी,
या अकाउंट्स क्लर्क था, वो होते होते मेरा चीफ अकाउंटेंट हो गया है। लेकिन उसकी काबिलियत वहीं की वहीं है।
जी जी, बिल्कुल।
सिर्फ बाय प्रैक्टिस चल रहा है वो। मैं जिस आदमी को अपने क्लर्क के तौर पर लाया था, ग्रो करते करते वो जनरल मैनेजर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया है।
सही।
अब मेरे दिमाग में ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की।
जी बिल्कुल।
तो मैं उस एक एहसान मंदी के जज्बे के तहत,
जी जी,
या किसी भी जज्बे जो आप नाम देना चाहें,
हाँ जी,
मैं उनको अपने साथ लेके चल रहा हूँ। मैं खुद नॉन प्रोफेशनल हूँ
जी,
प्रोफेशनल स्किल्स मेरे अंदर है नहीं, मैं बाय प्रैक्टिस चल रहा हूँ, वो भी बाय प्रैक्टिस चल रहे हैं, मेरे साथ मैच है उनका बड़ा अच्छा।
ठीक।
वी फॉर्म ए वेरी गुड टीम। लेकिन एक हद से आगे हम सोच नहीं सकते
जी,
तो ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक ग्रो करेगी। मेरा बेटा फ़र्ज कर लीजिए अमेरिका के किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी से MBA करके आता है,
जी जी,
अब उसका एक्सपोजर है अमेरिका का,
सही,
उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA करने के लिए लाइब्रेरी में 6 से 8 घंटे गुजारे हैं डेली,
जी,
और उसने प्रोफेशन से मुतालिका जो मैगजीन्स हैं, लिटरेचर है, बुक्स हैं, वो पढ़ी हैं, उसने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी,
ठीक,
क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है टेक्स्ट बुक पढ़ के इम्तिहान देने का। उसका मेंटल होराइजन बहुत ब्रॉड है। अब वो आता है और आके वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की बात करता है मेरे चीफ अकाउंटेंट के साथ। वो अकाउंटेंट साहब, चीफ अकाउंटेंट मुंह खोल के बैठ जाता है कि ये कहाँ से लफ्ज निकाल लाया है।
जी 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 बिल्कुल।
वो बात करता है कि देखो अपने पैसे पर तो सभी कारोबार करते हैं, हम अपने पैसे पर काम नहीं करेंगे, हम अपने सप्लायर्स, डीलर्स और बैंक, इन तीनों के पैसे पर काम करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। उसने बेचारे ने 30-35 साल अपने पैसे पे ही काम किया, उसकी समझ में वो आता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं।
जी जी बिल्कुल।
वो उसकी जुबान नहीं समझ रहे
जी,
मेरे बेटे की,
जी जी,
और मेरा बेटा उन एम्प्लॉयज की जुबान नहीं समझ
बिल्कुल
रहा,
सही,
उनकी बन नहीं रही।
जी जी।
एक हद तक तो बेटा एहतराम करेगा
जी
कि मेरे वालिद के पुराने एसोसिएट्स हैं,
हाँ जी,
लेकिन जब प्रोफेशनल बात आएगी तो वहाँ एहतराम एक तरफ, इस तरह वो टीम तोड़ देगा। वो अपनी टीम लाएगा
जी
जो मुश्तमिल होगी प्रोफेशनल्स पर,
सही,
और उनके साथ वो चलेगा। इसी तरह बेटा मेरा देगा एक, मैं एक एग्जांपल दे दूं,
जी,
रोल्स रॉयस कंपनी,
जी,
इन्होंने एक कार बेची एक कस्टमर को,
जी,
कुछ 6 महीने के बाद उस कस्टमर का लेटर आया रोल्स रॉयस कंपनी में कि मेरी गाड़ी में डिफेक्ट पैदा हो गया,
ठीक,
बात खत्म हो गई। तीसरे चौथे दिन 2 इंजीनियर्स आए, वो रेलेवेंट कंपोनेंट असेंबली उठाए हुए, और आके उन्होंने बोनट खोला, वो असेंबली फिट की, पुरानी असेंबली निकाली, और इनसे सेटिस्फैक्ट्री वर्क का सर्टिफिकेट लिया कि द जॉब हैज़ बीन डन टू माय सेटिस्फैक्शन, और चले गए। अब इसे महीना 1.5 महीना इंतज़ार किया, इसके नाम इनवॉइस नहीं आई, तो उसने लेटर लिखा कि इस तरह ये डिफेक्ट पैदा हुआ था, मैंने कंप्लेंट की थी, आपकी ये इंजीनियर्स की टीम आई थी,
सही,
और वो उसको रिपेयर कर गए, लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं आई, मुझे इनवॉइस भेज दी जाए
जी
ताकि मैं वो पे कर दूँ। जवाब क्या आया,
जी,
वी आर रियली सरप्राइज टू रिसीव योर, टू सी योर लेटर, काइंडली नोट दैट रोल्स रॉयस डू नॉट प्रोड्यूस सच कार्स विच कैन डिवेलप this type of defects throughout its life. Case close हो गया। अब उसकी assembly की कीमत quite a few thousands of pound,
जी,
वो उन्होंने उसको own करने से इनकार कर दिया। ये उनकी strategy है कि अपनी गाड़ी का इमेज हमने वो बिल्ड करना है,
फ्लॉलेस हो जो,
कि ये गाड़ी सारी उम्र चलती है बगैर किसी डिफेक्ट के, डिफेक्ट फ्री सर्विस थ्रू आउट योर लाइफ,
सही।
अब ये उनकी पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी मेरी पुरानी टीम के पल्ले नहीं पड़ेगी। वो कह जी ये शाह साहब के बेटे तो पैसा जाया कर रहे हैं,
सही,
बताइए लाखों रुपए के कंपोनेंट है,
जी जी, और फ्री दे जा रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे, हमने, हमारा इंजीनियर गया ही नहीं आपके पास,
जी जी,
ये क्या इम्पैक्ट रखेगी मार्केट पे, ये वो नहीं समझ,
वो नहीं समझ सकते, बिल्कुल सही।
तो यूं मेरा बेटा उस मैंने जो टीम बिल्ड की थी उससे नहीं चल पाएगा। यही हर जगह होता है,
सही,
वो जो थिंकिंग है वो नहीं चल पाती कहीं भी।
सही भाई, ये क्या वजह है कि हम बहुत सारे जगहों पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम बड़ी टैलेंटेड है, पाकिस्तानी कौम बड़ा जज्बा है, जोश है, क्रिएटिव हैं, ये जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी, टॉक शोज़ पे भी, अखबारों पे कॉलम लिखे जाते हैं। क्या वजह है कि एक भी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीनेशनल नहीं बन सकी, और किसी भी एक पाकिस्तानी कोई ब्रांड का, जैसे बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, फूड चेन्स हैं, जैसे कपड़े की हैं, शूज़ की चेन्स हैं, ग्लासेस की चेन्स हैं, पाकिस्तान का एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो मल्टीनेशनल में शामिल है, पाकिस्तान की एक भी ऐसी चेन नहीं है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। इसकी क्या वजह है कि हम, हमारी सोचों में कोई कमी है या हम कम नॉलेज है, कम प्रोफेशनल है हम लोग, क्या है?
जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ सेठिज़्म कल्चर बहुत है, हम कॉरपोरेट कल्चर बहुत कम दे पाए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूँ, आई डोंट नो आपके
जी जी प्लीज़
टीवी की पॉलिसी क्या है,
नहीं आप दे सकते हैं।
दाऊद हरकुलिस 1970 में सेटअप हुई, 71 में मुकम्मल हो गई थी, ये इंटरनेशनल लेवल पर इसने ऑपरेट किया। उसका सारा कल्चर कॉरपोरेट कल्चर है।
ठीक,
हमारे एक साहब गुजरे हैं जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं अपनी बारी पर,
जी
रज़ाक दाऊद,
जी
थ्रू एंड थ्रू प्रोफेशनल। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग की बनाई छोटे से पैमाने से,
ठीक,
वो ग्रो कर गई इनटू ए जायंट टेस्कॉन।
जी
हम जैसे लोग मौका ढूंढते थे कि मुझे जॉब वहाँ मिल जाए।
जी जी बड़ी ड्रीम जॉब हुआ करती थी टेस्कॉन में।
वजह क्या है कि रज़ाक दाऊद साहब मेंटली बहुत प्रोफेशनल आदमी है।
ओके,
वो हवाले कर देते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स के, सिर्फ उनको पॉलिसी देते रहते हैं। एक और साहब जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासर किया मेरी प्रोफेशनल लाइफ में,
जी,
वो यूसुफ शिराजी साहब थे, होंडा के फाउंडर, और उसको यहाँ तक पहुँचाने वाले, अब तो बेचारे इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। ये गालबन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या एक्साइज हुए कहीं ऑफिसर थे,
जी,
जूनियर मोस्ट लेवल पर बाहर आए और आके उन्होंने काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने इनको एक समझ अता फरमाई थी, हर दूसरे तीसरे साल हार्वर्ड के समर कैंप में जाके एक आध कोर्स कराते थे।
ओके,
नतीजा हुआ कि जहनी ग्रोथ इनकी बड़ी तेज।
सही,
तो आप देख लीजिए, इन्होंने होंडा की डीलरशिप से काम शुरू किया, आज क्या है वो। ये सब शिराजी साहब की मेहनत है।
कौन सा ब्रांड है उनका?
होंडा?
नहीं, होंडा तो पाकिस्तान का ब्रांड थोड़ी है, मैं तो बात कर रहा हूँ जिसने कोई पाकिस्तान का ब्रांड डेवलप किया हो।
ऑर्गेनाइजेशन एटलस ऑटोस के नाम से,
जी,
एटलस बैटरीज, एटलस इंश्योरेंस, एटलस सिक्योरिटीज, इस तरह,
ठीक है,
ये एटलस के नाम के जितने भी हैं यूसुफ शिराजी साहब की।
हाँ, ये पाकिस्तानी है। ठीक,
तो होंडा जो है इन्होंने जॉइंट वेंचर अंडर लाइसेंस रादर अंडर लाइसेंस यहाँ काम शुरू किया, मोटरसाइकिल लेकर आए,
ठीक,
फिर कार ले आए। इसके अंदर जो कुछ ये हॉबर्ट से सीखते थे, ये इसको टू लेटर इन स्पिरिट अप्लाई करते थे।
ठीक,
इनकी जो मैनेजमेंट का तरीका था ये है कि शिराजी साहब तशरीफ़ लाए लाहौर, होटल में ठहरे, अपने मैनेजर्स को बारी बारी बुलाया, उनसे कहा अपनी तजावीज़ लिख के लाओ, अपने कमेंट्स लिख कर लाओ, अपने काम की मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दो,
सही,
उनसे इंडिविजुअली कलेक्ट कर ली और होटल में बैठ के ही वुड गो थ्रू दैट, और उसमें अप्रिशिएट भी करेंगे, सजेशंस भी देंगे, करेक्शन भी करेंगे. लेकिन काम इनके मैनेजर्स कर रहे हैं. यहाँ लाहौर में दानिश साहब होते थे जो इनके मोटरसाइकिल के सेटअप को देखते रहते, डॉक्टर दानिश. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. नतीजा क्या हुआ कि एक डीलरशिप से उठे और यहाँ तक जा पहुँचे. ये तरक्की की रफ्तार है
जी.
अब उनका एटलस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत कुछ है.
ठीक.
जहाँ प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई हुई हैं वो ग्रो भी कर गया है. वरना मैं खुद कहता हूँ कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑन एवरेज लाइफ
जी जी
30 ईयर्स है.
30 ईयर्स
ऑन एवरेज.
30 ईयर्स के बाद आप क्या कहते हैं, खत्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन,
खुद ब खुद डाई आउट कर जाती है.
ओके.
मैं ऑन एवरेज कह रहा हूँ, फिर करेक्ट कर दूँगा.
जी जी मैं समझ गया.
मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा
जी.
उसके पीछे वजह यही है
कि एक नस्ल बना के दूसरी नस्ल उसको उजाड़ देती है,
उसको खत्म हो जाता है. लेकिन जहाँ हम कॉरपोरेट कल्चर ले आए और प्रोफेशनल स्किल्स हमने इंट्रोड्यूस करा दी
जी जी,
वो ग्रो करते चले जाते हैं.
अच्छा, दो तीन ऐसे काम जो है वो बताइए कि जो ऑनर्स हैं वो अपनी टीम, असल में टीम में होते हैं 100 लोग या ऑर्गेनाइजेशन में 200 भी होते हैं, 300 भी होते हैं, 400 भी होते हैं. असल में सेठ को चाहिए होते हैं 8 लोग मेन पिलर्स उसके, कोई एचआर का हेड, कोई मार्केटिंग का हेड, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर ऑपरेशंस, इसी तरह ब्रांडिंग का, ये 7-8 लोग जो मेन होते हैं. अच्छा, वो इन 8 लोगों के साथ या किसी ने 6 लोगों की टीम बनाई होती है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब वो ऐसा क्या करें हायरिंग के बाद इनके साथ कि वो उनके साथ, एक तो काम है ना कि आपने 8 घंटे दिए काम कर लिया, एक काम वो है जो जोश, जज्बा, दिल, दिमाग आप सारा कुछ लगा के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है. तो सेठ साहब को क्या करना चाहिए इन 8 लोगों के साथ कि वो टीम डेवलप भी करे और इस तरह से काम करे जैसे उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है.
देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे दें आप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे दें उन्हें. अब मल्टीनेशनल क्या करती हैं, कोई आसमान से तो नहीं उतरे.
जी जी,
हमारे जैसे लोग हैं, वो आसमान से उतरे हुए नहीं हैं.
जी,
हेड ऑफिस एक मल्टीनेशनल का जनेवा में है.
जी जी,
ऑफिस उनके 150 मुल्कों में है.
जी बिल्कुल,
फैक्ट्रीज उनकी 100 मुल्कों में है. वो एक बंदा वहाँ बैठा है, वो ऑपरेट कर रहा है. डू यू थिंक कि वो इस काबिल है कि वो इन 100 फैक्ट्रियों को रन कर ले जनेवा में बैठ के?
नॉट एट ऑल, अकेला तो नहीं कर सकता.
उसने अपनी एक टीम बिल्डअप की हुई है. अब इनकी जो वर्किंग है मल्टीनेशनल्स की, वो मैंने देखी.
जी जी,
बल्कि यूँ कह लें काम भी किया. वो आपसे मांगते हैं टारगेट दीजिए आप.
ओके.
आपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या टारगेट मुकर्र किया है?
सही.
आप उसको कहते हैं कि मैं इस साल ये प्रोडक्ट इतनी बेचूंगा.
ठीक.
उसका रेवेन्यू इतना इकट्ठा होगा. उस पर एक्सपेंस मेरा ये होगा. अगर वो ड्रास्टिकली लो नहीं रखा आपने कि मैं कंफर्टेबली उसे पूरा कर लूँ, तो कोई आपसे नहीं कहेगा कि नहीं अली अब्बास साहब आप 10% बढ़ाइए.
सही है.
ओके फाइन. अब आपके उस बजट पर बेस्ड प्रोडक्शन बजट बन गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना बना लिया है, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स की आनी है वो एचआर वालों ने बना लिया. कोई नहीं पूछेगा आप हैं कहाँ. लेकिन जब आपका ईयर मुकम्मल हुआ, अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है
जी.
कि मेरी परफॉर्मेंस क्या रही, बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स. उस पर वो आपकी बड़े महजब तरीके से हंसते हुए डिसेंट वे में खाल उतार के रख देंगे, ये ले लीजिए. तो अब होता क्या है कि टारगेट आपने खुद दिया हुआ है
जी,
आप उसको
अचीव नहीं
काम
कर
करने के लिए दिन रात जान मार रहे हैं, अपने स्टाफ के पीछे पीछे उनको फिरा रहे हैं. آپ نے لکھا کہ جناب پیٹرول میرا اتنا کنزیوم ہوگا, کوئی نہیں پوچھتا کیا ہے جب تک ایز لانگ ایز یو اسٹے ود ان دا بجٹ.
جی
اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کا آفس یا پاکستان کے ان کی فیکٹری رن کر رہے ہیں, آپ نے جو ٹارگیٹ دیے ہیں بجٹ اس کو پورا کرنے کے لیے جان مار رہے ہیں, آپ کو آفس جانے کا ٹائم تو ہے, واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں.
صحیح.
ملٹی نیشنل کے ورکرس,
جی
ان کا اسٹاف, مینیجرس, آپ کو بھی دیکھیے بیچارے 12-12 بجے تک
جی جی
بیٹھے کام کر رہے ہو,
ایسے ہی ہے,
اور ان کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہے.
نہیں ہے, صحیح ہے.
وہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ جو ان کو دیے ہوئے ہیں انہیں مکمل کرنا, ہم نے ہر حال میں مکمل کرنا. ہم پاکستان میں میرا رویہ کیا ہوگا کہ میں چیک کروں گا کون سا آدمی, 9 بجے دفتر لگتا ہے
جی
آفس ٹائم 9:00, 9:10 پہ چیک کر رہا ہوں فلاں آیا آیا یا نہیں آیا.
جی جی.
علی عباس صاحب نے دن میں کتنے کپ چائے پیے؟
جی.
علی عباس صاحب ذرا آئیے میرے کمرے میں.
جی.
علی عباس صاحب آپ نے 6 کپ چائے کیوں پی؟
صحیح.
وائی ناٹ 2؟
جی.
میں ان کے اوپر
اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنا ریسورسز,
مجھے یہ فکر نہیں ہے.
ہاں جی.
کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے, ابل تو ٹارگیٹ ہوتے ہی نہیں.
صحیح ہے.
میں بتاؤں گا آپ میں آپ نے کیا کرنا.
جی جی.
پٹتے ہم وہاں ہیں. اپنی آرگنائزیشن میں بجٹ بنائیے. وہ آرگنائزیشن کا بجٹ بیسڈ ہوگا تمام ڈپارٹمنٹس کے بجٹس پہ.
صحیح.
اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ جو ہے اس کی بجٹ میٹنگ میں پریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ مارکیٹنگ کے ہیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, آپ ایچ آر کے ہیں, آپ اس کے پروڈکشن کے ہیں, آپ فائننس کے ہیں, اکاؤنٹس کے ہیں, اپنے اپنے بجٹ آپ نے دے دیے.
صحیح.
ڈسکشن میں مکمل ہو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے میری آرگنائزیشن کا بریک ایون پوائنٹ کیا ہے. اب میری جو فال بیک پوزیشن ہے دیٹ از بریک ایون پوائنٹ.
جی جی.
پلس اس پہ 15% میری ہر سال انکریمنٹ آنی چاہیے.
جی.
وہ میری فال بیک پوزیشن ہے. اب آپ کا بجٹ اگر میری فال بیک پوزیشن پر فٹ بیٹھتا ہے تو میں خاموشی سے اپروو کر دوں گا. ادر وائز آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ان ریئلسٹک کر لیا.
صحیح.
آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں. یہ تو مینجمنٹ کا ایک پہلو ہے جو ہمارے یہاں لیک کرتا ہے. ہم اپنے آدمیوں پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. میں یو کے میں تھا, میرا بیٹا ایم بی اے کر رہا تھا, اس نے ڈسیجیشن سبمٹ کرنی تھی.
جی.
تو اس نے مجھے کال کیا کہ ابو ڈسیجیشن میں نے سبمٹ کرنی ہے, تو اس کی ایک فائل ہوتی ہے پراپر.
جی جی.
وہ اگر فائل لیتے آئے ایسڈ میں لے آؤں گا. تو میں نے وہ ایک اسٹیشنری سپلائی کمپنی جو وہاں آفس میں ہمیں سپلائی دیتے ہیں اسٹیشنری,
جی جی,
ان کو کال کیا کہ اس طرح ایک فائل میں, تو اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر اس کو دے دیا. 30 pounds کا غالب تھا فولڈر. وہ آ گیا تیسرے دن. میں نے وہ بیٹے کو بھجوا دیا. اس کے 15 دن کے بعد ایک اور پیکج آ گیا.
اچھا.
اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی. تو جو ڈلیوری لے کے آیا تھا اسی کو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے پہلے رسیو ہو گیا.
جی.
اس نے کہا اس پہ لکھ دیں. میں نے لکھ دیا. جب میرے کریڈٹ کارڈ کا بل بینک سے آیا,
جی,
تو اس کے اندر وہ ڈبل چارج ہوا ہوا تھا, 30 pounds.
اوکے.
تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کال کیا, تو آبویسلی کوئی کلرک بول رہی ہوگی. تو اس کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح آڈر دیا تھا. اس نے کہا ایک منٹ میں کمپیوٹر پہ چیک کر لوں. تو اس نے کہا ہاں آڈر دیا تھا, وہ ڈلیور بھی ہوا. تو میں نے کہا ہاں, لیکن دوبارہ آیا تھا باکس اس کا, وہ پیکیج میں نے واپس کر دیا تھا, لیکن آپ نے مجھ سے 2 times چارج کر لیا. اس نے کہا او از دیٹ سو؟ میں نے یس. اس نے کمپیوٹر پہ چیک کیا تو ریٹرن ہوا ہوا تھا پیکیج.
جی جی.
انہوں نے کہا آئی ایم ریئلی سوری. आई एम राइटिंग बैक दैट अमाउंट, और वो जो तुमने यूज़ कर लिया वो भी हमारी तरफ से गिफ्ट
हो गया।
तो उसने बजाय 60 pounds के कुछ भी नहीं लिया, राइट बैक कर दिया। अब वो क्लर्क है बेचारी
जी,
नो वंडर के कहीं वो डेली वेजेस पर ही हो।
जी जी,
लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी है। उसने मेरा 30 pounds का, ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की,
सही,
वो उसने राइट बैक कर दिए। अब उससे ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछेगी
यस
कि ये तुमने क्या किया। मेरे मातहत कोई अगर मैनेजर भी कर देगा,
ओ माय गॉड,
तो मैं तो उससे कहूंगा ये तुमने बेईमानी की, तुम्हारा जानने वाला था कोई?
हाँ जी जी जी, बिल्कुल,
जिसको तुमने ये 30 pounds का फ्री दे दिया
और मैं तुम्हारी तरह से काटूंगा ये 30 pounds। बिल्कुल सही है।
अब ये देखिए, ये फर्क है उसमें। वो एक और किस्सा एक साहब ने सुनाया, हंस के बड़ा मारका मारा था, वो वाकई मारका मारा था
जी।
वो कहीं शॉपिंग के लिए गए तो एक रैक पर एक में कोई पड़ी होगी चीज़ घर के इस्तेमाल की, तो उन्होंने देखा वो लिखा हुआ था 3 pounds 50 pence
जी,
उसमें 3 and 50 छोटा स्मॉल
जी जी
फॉन्ट में। तो उन्होंने वाइफ से कहा कि ये इन्होंने गलती की हुई है। तो वो उन्होंने रैक से उठाई मशीन,
जी जी,
किचन की होगी कोई, और जाके काउंटर पे दूसरे सामान के साथ रख दी
जी।
तो दूसरा सामान चार्ज हुआ, इसको उसने किया 350 pounds। तो ने कहा कि 350, ये तो 3.5 की है
जी।
उसने कहा कमांड, यू मस्ट बी किडिंग, तो यू थिंक कि ये 3.5 pounds की हो सकती है? उसने कहा कि मैंने तो नहीं कहा, तुमने लिखा हुआ
जी जी।
उसने अपने मैनेजर को बुला लिया और मैनेजर साहब ने कहा कि नहीं, तो नो सर, इट इज फॉर 350 pounds
जी।
उसने कहा कि बट यू रोट इट देयर
3.5।
उसने कहा चलो दिखाओ
जी।
रैक पे लेके गए तो वाकई 3 बड़ा था और 50 स्मॉलर फॉन्ट में था।
सही।
उसने आके कहा कि इसको कि चार्ज इम 3.5।
अच्छा,
3.5 pounds। अब जाहिर है कि इन्वेंट्री का हिसाब जो वो देगा
जी,
तो ये मशीन 3.5 pounds में उसने बेची है
जी,
350 pounds की। उसकी मैनेजमेंट में उस पर एतबार किया है।
एतबार, बिल्कुल सही।
मेरी तरह नहीं करेंगे कि मैं उनसे कहूँ नहीं तुम घर ले गए हो, ये बहाना बनाया।
जी जी जी, बिल्कुल
ऐसा नहीं है।
मैं शायद दो सिनेरियो सब आपके सामने रखता हूँ। हमारा आजकल क्योंकि आईटी का दौर है और छोटी छोटी ना सॉफ्टवेयर हाउसेज बनते हैं, 4-5 स्टूडेंट्स मिलके जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, या कोई गेमिंग का छोटा सेक्टर है वो शुरू कर लेते हैं, या कोई सोशल मीडिया की कंपनी बना लेते हैं जो कि आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है सारा। अच्छा होता ये कि 1.5-2 साल बड़ा अच्छा काम करते हैं और फौरन से उनमें से एक निकलता है वो अपनी कंपनी बना लेता है, दूसरा निकलता है वो अपनी कंपनी बना लेता है। अच्छा, जो तीसरा रह जाता है क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं होते, उसकी भी कंपनी जो है वो
बैठ जाती है।
अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है, मुझे बताइए कि ये क्या उसमें कमियां होती हैं जब ऐसे मामलात हो जाएं, तो इसको डील कैसे करें?
देखिए, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है
जी,
वो हमें मरवा देता है। सम और दी अदर, हम देखते ही दूसरे को शक की नज़र से हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं और आप पार्टनर हैं, आप गए जाके मैरियट में ठहर गए
जी जी।
अब मैं उसको बहाने बहाने से चेक कर रहा हूँ कि अलिया बाद साहब क्या हॉलीडे इन में जगह नहीं थी मैरियट में ठहरे? अब एक दो बार तो महजब तरीके से कह दिया, उसके बाद मैंने ग्रंबल करना शुरू कर दिया कि लीजिए अलिया बाद साहब जब भी जाते हैं कंपनी एक्सपेंस पे मैरियट में ठहरते हैं और पर डे इतना किराया देते हैं। ये एक मिसट्रस्ट है उसमें। अगर मैं इसका ये करूं कि एंटाइटलमेंट्स अपनी और आपकी वो ब्लैक एंड वाइट ले आऊं और आपस में बैठ के म्यूचुअल डिस्कशन के बाद वो वर्कआउट करके
जी
मैं रख दूं हर चीज़, तो ये सिचुएशन नहीं पैदा होगी।
ठीक है,
क्योंकि मेरा अकाउंट्स का क्लर्क ही आपको कह देगा कि सर आप तो इंटाइटल नहीं है इसके। ये जो मिसट्रस्ट पैदा होता है, हमारी पार्टनरशिप्स इस पे टूटती हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी है।
जी जी,
आप एक साहब से फर्ज कर लीजिए मिल रहे हैं पिछले 30 साल से, आपने देखा कि बड़ा नेक दिल शख्स है, नेक अतवार है
जी,
हकूक अल्लाह भी बड़ी पाबंदी से अदा कर रहा है, दिन रात का आपका साथ है, आप पार्टनर भी हैं। सडनली मैंने आपसे कह दिया कि लिया बात साहब, वो जो आपके पार्टनर आपको पता है ड्रिंक करते हैं।
जी जी,
अब आपने एक लम्हे को नहीं सोचना कि मैं 30 साल से उसके साथ हूँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा। वो तो बड़ा नेक आदमी है।
सही,
आपने फौरन मेरा ये जुमला आपने बाय कर लिया, ना सिर्फ आपने खुद बाय किया बल्कि इसको आगे स्प्रेड भी कर दिया। ये जो एक पहलू है हमारे कैरेक्टर का, बहुत कम लोग मिले हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं जनरल बातें कर रहा हूँ कि जनरली हमारे अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि हम बुरी बात को फौरी तौर पे
ना सिर्फ उसको रिसीव कर दें, आगे बढ़ाना शुरू कर दें। अच्छा शाह साहब, मैंने दो बरादरियाँ ऐसे देखी हैं जो टीम मैनेजमेंट और बिल्डिंग के हवाले से, वो बड़ा एक उनके पास डिफरेंट टेक्निक है अपनी टीम को इन्वॉल्व रखने की। वो एक तो शेख बरादरी है और एक मेमन है। ये लोग जो अपने इनके जो टॉप के 8-10 लोग होते हैं ना, इनका ना प्रॉफिट में शेयर डाल देते हैं। और जैसे वो प्रॉफिट में शेयर डालते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी उन्होंने फिक्स की होती है अमाउंट, तो फिर वो दिन रात, और फिर वो रमज़ान क्या हो, ईद क्या हो, वो कोई उनके लिए ज़िंदगी में और कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और वो ग्रो खुद भी फिर करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इतने पैसे मिलने हैं इसके इस काम के। अच्छा, एक तो तनख्वाह होती है ना, तनख्वाह से मैंने ये हिसाब लगाया कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक मोटिवेट नहीं कर सकते, या उनके अंदर से जो उनका जोश और जज्बा है ना वो नहीं निकाल सकते। या तो रिस्पेक्ट हो, या तो आप उनको कोई बड़ा ओहदा दे के मोटिवेट कर सकें, या डेफिनेटली आप प्रॉफिट शेयरिंग में। अच्छा शाह साहब, सवाल ये है कि अगर ये 8 लोगों को या 6 लोगों को प्रॉफिट में शेयर दे दिया जाए तो क्या इससे टीम रिटेन रहती है और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है?
मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक कामयाब होती है हमारे यहाँ। असल चीज़ है मोटिवेशन
जी,
कि आप मोटिवेट कैसे करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बड़ी दूर हम भागते हैं।
जी जी,
हमारे नज़दीक वो वेस्ट ऑफ मनी है।
जी जी बिल्कुल,
हालांकि बगैर R&D के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे कोई अदारा हो या मुल्क हो। जो अच्छे अदारे हैं वो तो R&D डिपार्टमेंट के एलोकेट करते हैं अपने टोटल टर्नओवर का 2%, या तो 2% टर्नओवर का चला जाएगा,
टर्नओवर का ठीक है,
या 10% प्रॉफिट चला जाएगा।
प्रॉफिट ठीक है। आप कितना रिकमेंड कर रहे हैं, कितना आपको स्पेंड करना चाहिए R&D पे?
मैं तो 2% ऑफ टर्नओवर,
ऑफ द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू
ऑफ टर्नओवर।
ठीक है,
हम इससे बड़ी दूर भागते हैं। इसी तरह हम एक और चीज से बड़ी दूर भागते हैं। मेरी बहुत डिस्कशंस हुई हैं एंटरप्रेन्योर हजरात के साथ। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं कि अपने स्टाफ की ट्रेनिंग हम करें, उनको कोर्सेज कराएं।
सही, नहीं शायद अब बस कथा कला में माफ हो, ये कहते हैं कि कोर्स करवाती है ना जब इनको
ये चले जाते
ये सीख के तो कहीं और चले जाते
ये जवाब में ये मिलता है
जी जी
कि जी हम इतना पैसा इस पे खर्च करेंगे हाँ। ये आती भाग जाएगा
जी बिल्कुल।
मैं उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया करता हूँ, क्या मल्टीनेशनल्स को ये डर नहीं होता?
जी
एक बड़ी सिंपल बात
जी जी,
मल्टीनेशनल्स क्यों आपको कोर्सेज कराती हैं? वो क्यों नहीं भाग जाते?
अच्छा शाह साहब, वैसे मेरा काउंटर आंसर ये होता है कि आप लोग भी तो कोई ट्रेंड बंदा कहीं से लेके आ रहे हैं ना, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर स्पेंड किया और आपने उसको,
वो तो आप फिट करेंगे ना उसको
जी,
कि जी, वही ताना उसको दे रहे हैं
जी जी जी। हाँ ये बात सही है कि मल्टीनेशनल तो अपना लगाती है पैसा। हाँ सही कह रहे हैं,
आपके जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए भेजती
जी जी,
वो भी तो काम करते रहते हैं, आपके आर्म्ड फोर्सेस में ही प्रैक्टिस होती है
जी।
तो हम उससे बड़ी दूर भागते हैं, बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है वो कि आप अपने स्टाफ को पीरियडिकली, ये जो एचआर है
जी,
असल में हमारे यहाँ एचआर क्या है, उसको पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते थे, एडमिन डिपार्टमेंट
जी जी,
उसका नाम बदल के एचआर कर दिया, उसको मॉडर्नाइज कर दिया
जी जी,
परफॉर्मेंस उसकी अब भी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एचआर का तो मतलब ये है कि वो डेवलप करता है ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन
जी जी।
एचआर वालों की ड्यूटी है कि हर एम्प्लॉय को रोटेशन में डाल के उनके कोर्सेज, उनकी करियर डेवलपमेंट, उनकी वेलफेयर, उस सब का ख्याल रखें।
सही।
फिर हम एक गलती करते हैं कि अपने स्टाफ की वेलफेयर का ख्याल नहीं रखते। मल्टीनेशनल्स में ये प्रैक्टिस मैंने खुद देखी भी है, की भी है, कि आपने अगर एक आदमी को हायर किया, उसको ज्वाइनिंग डेट आपने दी है 20 जनवरी
जी,
19 जनवरी को अगर वो सीनियर आदमी हायर हुआ है
जी जी,
तो जो टॉप मैन है वो खुद उसका ऑफिस देखेगा कि ऑफिस में पूरी चीजें हैं
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
उसका ब्रीफ केस तैयार होगा
जी जी,
उसके अंदर स्टेशनरी उसके पेन तक उसमें होंगी,
बिल्कुल सही,
उसकी गाड़ी खड़ी होगी बाहर, उसकी चाबी यहाँ, तो उस वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो हेड है वहाँ
जी जी,
वो न सिर्फ ये कि उसको खुद इंट्रोड्यूस कराएगा
जी,
स्टाफ
जी, में जी,
बल्कि थ्रू लेटर भी सर्कुलेट करेगा,
सही सही सही,
कि इन साहब ने हमें ज्वाइन किया है एंड ही ब्रिंग्स दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस विद हिम,
बिल्कुल सही,
जिससे कंपनी बेनिफिट होगी, और उसको कहेगा साहब ये आपका ब्रीफ केस है, ये आपकी गाड़ी की चाबी है, बाहर खड़ी है,
सिस्टमेटिक होगा सारा, बिल्कुल सही,
उसके आने से पहले हर चीज
जी जी,
हम ये रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है, हमारे पास तो आदमी आया
जी 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 कि
सर वो आज मैंने ज्वाइन करना था
जी जी,
अच्छा ठीक है वो देखो वहां बैठो
जी, बिल्कुल,
फिर इंडक्शन प्रोग्राम हम नहीं देते, हमें ये होता है कि अभी आदमी आया, आपने अभी 9 बजे ज्वाइन किया, 9:05 में आपको असाइनमेंट दे,
असाइनमेंट देनी शुरू हो गई, ठीक है जी जी सही।
मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ये है कि आपको मैं अपने कमरे में बिठा के, अली अब्बास साहब आपने ज्वाइन किया, मोस्ट वेलकम, अब आप एक हफ्ता सिर्फ पिछली फाइलें पढ़िए
जी,
स्टाफ से मिलिए, आपने काम नहीं करना, उसके बाद मुझे तजवीज़ दीजिएगा कि आपके
जी जी
मुताबिक कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सिस्टम में, दफ्तर में,
बिल्कुल ठीक है,
आपने एक हफ्ते की स्टडी के बाद मुझे रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट ने मुझे बता दिया कि अली अब्बास साहब आइंदा मेरे साथ क्या करने वाले हैं, आपकी टेंडेंसीज, आपके ट्रेंड्स सब उस रिपोर्ट से ट्रांसपायर हो रहे हैं,
बिल्कुल सही है,
तो ये बहुत, इसलिए मैंने कहा था कि एक लंबा सब्जेक्ट है
जी जी जी,
कि कहाँ कहाँ क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं, क्यों टीम हमारी टूट जाती है
जी जी जी,
तो वो मैंने 2 जुमलों में तो इसे नटशेल में बंद कर दिया था कि आप उन्हें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दीजिए
जी
और सेंस ऑफ बिलोंगिंग दीजिए,
बिलोंगिंग सही,
टीम कभी नहीं टूटेगी आपकी।
शाह साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा ही मज़ा आया आपसे ये गुफ्तगू करके, और इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जब शाह साहब जिक्र कर रहे थे कि मल्टीनेशनल के सिस्टम्स का, मुझे एक पाकिस्तान की कंपनी याद आ गई। उसमें जब एम्प्लॉई आता है, जब उसकी पहले दिन की जॉब होती है, तो वो रिसेप्शन पे बैठता है, तो उसको कोई नहीं पता होता कि वो कहाँ से उसने आना है, उसने कहाँ पे जाना है। जबकि सबसे पहले तो उसकी एम्बेरसमेंट वहाँ से शुरू हो जाती है जब उसको सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और उसको बताना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पे हायर हो गया हूँ। फिर वो फ़ोन करता है अंदर और अंदर से पूछता है। जब वो अंदर पहुंचता है, फिर उसको रिसेप्शन में बैठा दिया जाता है और उसको फिर कोई समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे किसने टेक ओवर करना है। क्योंकि जिसने इंटरव्यू किया होता है, उसने ये असाइनमेंट किसी को दी ही नहीं होती कि कल इस शख्स ने आना है, इसकी पहली डे की जो जॉब है वो शुरू हो जाएगी। कोई सिस्टम नहीं होता। फिर वो आके अपना दफ्तर खुद ढूंढता है, फिर वो आके फिर लैपटॉप के लिए वो दरख्वास्तें देता है, फिर वो मोबाइल के लिए दरख्वास्त देता है, फिर वो गाड़ी के लिए दरख्वास्त देता है। तो इसी में वो एक इतना डिसहार्ट हो जाता है पहले ही 4-5 दिनों में कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये मैंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।